میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج اس بیان میں شریک رہوں گا۔ قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، اللہ پاک سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز الایمان، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو علامہ احمد ساوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نور خدا احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنے میں تین حکمتیں ہیں۔ نمبر ون، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا یہ اللہ پاک کی سنت ہے، لہذا درود پڑھنے والا سنت الہیہ پر عمل کرتا ہے، یعنی اس کی پیروی کرتا ہے۔ نمبر دو، درود پاک پڑھنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے۔ اور نمبر تھری، رحمت دو جہان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے صدقے میں سب مخلوقات کو نعمتیں ملی اور مل رہی ہیں، لہذا تمام مخلوقات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار حقوق ہیں، اور درود پاک ان میں سے کچھ حقوق کی ادائیگی کا ذریعہ ہے۔ محبوب رب اکرم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں درود ہر دم، لاکھوں سلام تم پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے، قرآن کریم سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، اور اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ کنز العرفان، کے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ مفسرین کرام نے اس حوالے سے فرمایا کہ الحمدللہ اس میں ایک دعویٰ کیا گیا کہ تمام تعریفوں کا حقیقی مستحق صرف اور صرف اللہ پاک ہے۔ رب العالمین میں اس دعوے کی دلیل دی گئی کہ یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی دلیل کیا؟ फरमाया रब العالمین, यानी अल्लाह पाक तमाम जहानों का पालने वाला है, और जो तमाम जहानों को पाले वही मुस्तहिक है कि उसकी तारीफ की जाए। कि तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई, क्या आसमां बनाया, हर चीज से है तेरी कारीगिरी टपकती, ये कारखाना तूने कब राएगा बनाया। तो लफ्ज रब का माना है पालने वाला, और आलम का लफ्जी माना है अलामत निशानी, यानी कायनात की हर चीज जर्रा जर्रा, क्योंकि अल्लाह पाक के वजूद उसके एक और सच्चा खुदा होने की दलील है। तो कायनात के जर्रे जर्रे में उसकी कुदरत की निशानियां मौजूद हैं। इसलिए अल्लाह पाक के सिवा जो कुछ है सबको आलम, यानी अल्लाह पाक के एक और सच्चा खुदा होने की निशानी कहा जाता है। अभी आलम कितने हैं, ये बड़ी प्यारी इसकी तफसीर आपको बयान करता हूं। इसका सही इल्म तो रब ताला को ही है। बुजुर्गों के जो अकवाल हैं, हजरत दहाक रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि कुल 360 आलम हैं। हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आलम 1000 है, और हजरत वहब रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते कि कुल 18000 आलम हैं। गरज कुल आलम कितने हैं हमें इनकी तादाद मालूम नहीं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन वो है कि ये तमाम आलम बनाए, यानी तमाम आलम भी उसी ने बनाए हैं और वही इनको पाल रहा है। एक मरतबा अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, ये आपके सामने जो पत्थर है इस पर अपना असा यानी लाठी मारिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा तो पत्थर टूट गया, उसके अंदर से एक और पत्थर निकला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे असा मारा, वो भी टूट गया, उसके अंदर से एक और पत्थर निकला। हजरत मूसा अली सलाम ने उस तीसरे पत्थर को ऐसा मारा, वो भी टूट गया। पत्थरों के इन तीन तेहों में आखिरी पत्थर में एक छोटा सा सुराग था, उस सुराग के अंदर एक छोटा सा कीड़ा था, उस कीड़े के मुंह में कोई खाने की चीज थी। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अली सलाम को ताकत अता फरमाई, आपने उस कीड़े की आवाज सुनी, वो मामूली सा कीड़ा कह रहा था सुबहान मन यरानी वो यस्माउ कलामी वो यारिफु मकानी वो यज़कुरुनी वला यंसानी, पाक है जो मुझे देखता भी है, मेरी पुकार भी सुनता है, मैं पत्थर की इन तीन तेहों में छोटे से सुराख में हूँ, वो मेरा पता भी जानता है, पाक है जो मुझ जैसे छोटे से कीड़े को भी नहीं भूलता, मुझे रिस्क पहुंचाता है। अंदाजा लगाए क्या शान रबूबियत है, अंदाजा कीजिए कि कायनात कितनी बड़ी है। साइंसी आदादोशुमार के बाद इनकी जो साइंस की रिसर्च है इसके मुताबिक हमारी जमीन का कुल रकबा 51 करोड़ 51 करोड़ मुरब्बा मील से कहीं ज्यादा है, और सूरज इतना बड़ा है कि इस जमीन जैसी जो हमारी जमीन है 13 लाख जमीनें उसमें समा सकती हैं। फिर सूरज भी हमारी कहकशां का एक छोटा सा हिस्सा है, और साइंसदानों के मुताबिक हमारी कहकशां ये मिल्की वे जिसमें निजाम शमसी सूरज चांद सितारे जमीन वगैरह, ये कहकशां इतनी बड़ी है कि कोई 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करे तो इस कहकशां से निकलने के लिए हजारों साल का अरसा लगेगा, और यह भी एक कहकशां है। साइंसदानों के बकौल कायनात में ऐसी हजारों कहकशाएं मौजूद हैं। तो इतनी बड़ी कायनात, चरण के नाजी तस्वर के इतनी बड़ी कायनात, इसके मुकाबले में हमारी जमीन ऐसी है जैसे सहरा के मुकाबले में एक जर्रा, कायनात के मुकाबले में इस छोटी सी जमीन पर एक छोटा सा पत्थर है, उस पत्थर के अंदर एक पत्थर, फिर उसके अंदर एक और पत्थर, पत्थर की इन तीन तेहों में एक छोटा सा कीड़ा है, वो जात जो इतनी बड़ी कायनात में इस मामूली से कीड़े को भी मुसलसल रिस्क पहुंचा रही है, उसे रब्बुल आलमीन कहते हैं। बतून संग में कीड़ों को पालता है तू ही, सदफ में गौहरे नायाब डालता है तू ही, वो जिनों इंसों मलक हो के हो चरिंदो परिंद, तमाम नोए खलाइक को पालता है तू ही। तो इस जमीन पर कितनी किस्म के जानदार रहते हैं, कि इंसान से नौ गुना ज्यादा जिन्नात, नौ गुना जिन्नात से ज्यादा चरिंद परिंद जानवर, फिर चरिंद परिंद, फिर जो हमारी समंदरी मखलूक है, ये सब, यानी सोचे कि कितनी ये सारा जानदार है और इन सब की जरूरियात कितनी है, ये सब किस तरह परवान चढ़ते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जिंदगी गुजारते हैं, इन्हें रिस्क कैसे मिलता है। अगर ये सारी सारी तहकीकात की जाए तो सदियां लग गई, शायद हम फिर भी इनकी मालूमात हासिल ना कर पाए, ज्यादा दूर ना जाए, अपने इस 5-6 फिट का जो हमारा जिस्म है इस पर जायजा ले लें। साइंस में खुलिए यानी सेल को सबसे छोटा जानदार माना गया है, ये आंख से नजर नहीं आता, जैसे ईंटों से दीवार और दीवारों से घर बनता है, इसी तरह लाखों सेल से मिलकर एक उजू बनता है और आजा मिलकर जिस्म बनाते हैं। एक इंसान के जिस्म में तकरीबन 300 खरब सेल्स होते हैं और हर खुलिए हर सेल में एक डीएनए होता है, और साइंसी आदाद व शुमार के मुताबिक अगर एक इंसान के जिस्म के सारे डीएनए इकट्ठे करके लाइन में जोड़ दिए जाएं तो जमीन और चांद के दरमियान जितना फासला है उससे 10 गुना बल्कि इससे भी लंबी लाइन बनेगी। तो पाक है हमारा रब वो जात के जिसने इतने सारे खुलियात, इतने सारे सेल्स को छोटे से जिस्म में समो दिया। फिर इंसानी दिमाग को देखिए, छोटा सा उजू है लेकिन ऐसा कमाल है कि अब तक दुनिया में कोई ऐसा कंप्यूटर बना नहीं है जो इंसानी दिमाग का मुकाबला कर सके। एक इंसानी दिमाग में 30 अरब सेल्स होते हैं, हमारे जिस्म में इत्तलात का एक पूरा निजाम है, मसलन चूल्हे पर रखी गर्म पतीली से हमारा हाथ लग जाए तो थोड़ी देर के तसव्वुर करें क्या होता है, एक झटके से हाथ पीछे खींच जाता है। ये कैसे होता है? हमारे दिमाग की बदौलत, जैसे ही हाथ पतीली से टकराता है हमारे जिस्म में मौजूद सेल्स दिमाग को इतला देते हैं, दिमाग फौरन हुक्म जारी करता है, हाथ पीछे हट जाता है, और हैरत की बात यह कि सब पलक झपकने की देर में हो जाता है। और इस पर रिसर्च हुई है, कहा जाता है कि हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से से दिमाग की तरफ जाने वाली इतला 340 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर करती है। और अगर हमारे जिस्म में इतलात का ये बेहतरीन निजाम ना होता तो शायद हमारे बहुत सारे हादसात का शिकार हो जाते। और फिर इम्यूनिटी सिस्टम जो है हमारा मुदाफाती निजाम, ये जिस्म की गोया एक फौज है, और बायोलॉजी के मुताबिक हमारे जिस्म में 1 से 5 खिलियात सेल जो है ये रोजाना कैंसर का शिकार होते हैं। हमारा इम्यूनिटी जो निजाम है इन सेल्स को फौरन मार देता है जिससे हम कैंसर से महफूज रहते हैं। तो गौर फरमाइए कि अगर ये हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ना होता तो हम जिंदा कैसे रहते? हमारा दिल एक अहम पार्ट ऑफ बॉडी है, ये पूरे जिस्म को खून सप्लाई करता है। हमारे जिस्म में मौजूद खून रोजाना 19,000 किलोमीटर का सफर करता है, और ये सारा सफर किसके जरिए होता है? दिल के जरिए। फेफड़े लंग्स, ये बाहर से ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, ये इनका काम है। जब हम आराम से सोए होते हैं उस वक्त हमें 1 मिनट में 9 लीटर हवा की जरूरत होती है, और जागते हुए जब आराम से बैठते हैं तब फी मिनट 18 लीटर हवा की जरूरत होती है, जो रब कायनात हमें मुफ्त फराम कर रहा है। यानी मैंने एक जगह पढ़ा था, एक शख्स कहता है कि वो अपने किसी दोस्त से मिलने गया, अपने किसी दोस्त से मिलने गया और उसने देखा कि बड़ा वो पहलवानों जैसा था, तगड़ा था और बड़ा मैंने स्किल्स भी बहुत अच्छी थी, बहुत बासर शख्स नौजवान था वो। कहता है कि जब मैंने उसको देखा तो उसका वजन सिर्फ 70 किलो रह गया था और कहा कि बीमार होने से पहले कितना था, कहा 103 किलो। फिर कहा कि मुझे गुर्दे वॉश कराने पड़ते हैं, तो कहा कि हर चौथे रोज तकरीबन 4-5 हजार रुपए का खर्चा होता है। पास ही देखा कि 2 सिलेंडर पड़े हुए थे, उनके बारे में पूछा। और आजकल ये सारे जो कोरोना और दीगर जो बीमारियां हैं, इसमें कई ऐसे मरीज हमारे अपने खानदान में, कभी गौर कीजिएगा प्यारे साहब, पता नहीं चल के नाजरे, थोड़ी सी गौर और फिक्र के लिए मैं बयान कर रहा हूं। ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े थे, पूछा तो कहा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इनसे ऑक्सीजन की कमी पूरी करता हूं। ये छोटा सिलेंडर जो है ये 300 रुपए में भर देते हैं, अब तो और ज्यादा महंगाई हो गई, और दिन में 3 मरतबा भरवाता हूं। बड़ा सिलेंडर लिया ये 800 रुपए में भरते देते हैं, आज चौथा दिन है ये भी खत्म होने को है। कल दुआ देने के बाद जब वापस होने लगा तो उसने कहा मेरे लिए दुआ। मैंने जू ही दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, मेरे आंसू रुकने का नाम ले रहे थे, मैं मांगना भूल गया। मैं यही सोच रहा था कि ये मरीज रोजाना 900 रुपए की ऑक्सीजन लेता है और मैं मुफ्त। ये पानी पीता है तो इसको पानी खारिज करने के 4000 रुपए देने पड़ते हैं और ये कई महीनों से उठ नहीं पाता। मैं घूम रहा हूं, मेरे गुर्दे सही सलामत है जो मुसलसल वॉश कर रहे, मुझ पर मेरा रब का कितना करम है कि जो बीमार पड़ता है जरा उससे पूछा जाए कि भाई ये सब जो तू नेमतें पाता है इसके बदले, यानी ये जो नेमतें इसने ली है ऑक्सीजन और दीगर जो जराए लिए हैं, ये सारे पैसे खर्च करके हो रहा है और हमें ये सारी चीजें रब ताला मुफ्त अता फरमा रहा है। यानी खून साफ करने का जो निजाम है, तो कहते हैं कि गुर्दा जो है ना ये 140 ग्राम का होता है और इसमें 10 लाख छलनियां होती हैं। अगर इन छलनियों को खोलकर बिछाया जाए तो इसकी लंबाई 105 किलोमीटर बनेगी। इतना बड़ा निजाम हमारे रब ने एक छोटे से गुर्दे में रख दिया। हमारे गुर्दे सिर्फ 1 घंटे में हमारे सारे खून को 2 मरतबा साफ करते हैं। अल्लाह अकबर। यानी अंदाजा कीजिए कि 24 घंटे में 48 मरतबा हमारे जिस्म का सारा खून साफ हो रहा है और हमें इसका एहसास नहीं है। हम अपना काम जारी रखे हुए हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं, कोई इंतजार नहीं। अगर खुदा ना खासा ये खून की सफाई रुक जाए, गुर्दे काम करना छोड़ दे, तो हमारा सारा जो खून है जहर आलूद हो जाए, मगर रब की कुदरत है कि गुर्दे मुफ्त में खून साफ करते जा रहे हैं। हमारा जो लीवर है, जिगर, ये हमारे जिस्म का सबसे मसरूफ तरीन पार्ट है। जिगर ये बेमिसाल मशीन है जो 500 से ज्यादा काम सर अंजाम देता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक हम जो गोश्त खाते हैं ये एक किस्म का जहर होता है, लेकिन हमारा जिगर इस जहर को फौरन प्रोटीन में तब्दील करके हमारे लिए फायदेमंद बनाता है। हर सेकंड में हमारे खून के 1 करोड़ सेल्स मरते हैं। अगर ये मुर्दा खलिए सेल जिस्म में रह जाए नुकसान पहुंचाएंगे, मगर जिगर इन करोड़ों सेल्स को फौरन स्टोर करके इनको दोबारा सुरखुली बना देता है। फिर हमारा निजाम हजम एक लुकमा, जिसे हम तो मजे लेकर चबा लेते हैं, लेकिन ये एक लुकमा पैदा होने से लेकर हजम होकर जिस्म का हिस्सा बनने तक सैकड़ों मराहिल से गुजरता है। بیچ زمین کے اندر ہے، بارش ہوئی بیچ کو وہیں خوراک پہنچائی گئی، بیچ نیچے سے پھٹا، نیچے جڑ بنی، اوپر کونپل نکلی، کونپل پر خوشہ لگا، اس پر دانہ پیدا ہوا، سورج نے گرمائش دے کر دانے کو پکایا، اس سے لقمہ بنا، ہمارے منہ میں گیا۔ اب نظام انہضام ڈائجسٹک سسٹم کا کام شروع ہو گیا، ہمارا معدہ، آتے، ان میں موجود ہزاروں بیکٹیریا اور دیگر جرثومے ان کے ذریعے کھانے کے باریک باریک ٹکڑے بنے، پھر جگر اور دیگر کئی اعضاء کی مدد سے انہیں مختلف غذائی اجزاء میں تبدیل کر کے پورے جسم میں تقسیم کر دیا گیا۔ اللہ اندازہ کیجیے کہ ایک انسانی جسم کی پرورش کس نرالے انداز سے ہو رہی ہے، اور ان سب باتوں کو جان کر زبان پر یہی آتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، تو بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہاں کا۔ تو مفسرین کرام یہ بہت پیارا مدنی پھول بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک تمہاری ایسے پرورش فرماتا ہے جیسے دنیا میں تم ہی اس کے ایک بندے ہو، مگر تم رب کائنات کی عبادت میں ایسی سستی کرتے ہو گویا تم نے ایک خدا کی نہیں بلکہ ہزاروں خداؤں کی عبادت کرنی ہے۔ یہ چوٹ کرنے والی بات ہے، ذرا غور فرمائیے کہ دنیا میں ہمارے ظاہری رشتوں میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی شخصیت کون؟ ہماری ماں، ماں کو مانا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں عام طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جب ایک بچہ ہوتا ہے تو ماں اسے بھرپور توجہ سے پالتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب بچے دو ہوتے ہیں تو ماں کی توجہ بٹ جاتی ہے۔ بعض گھروں میں تو آیا اور نوکرانی بھی رکھی جاتی ہے تاکہ بچے کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جائے۔ قربان جائیے، اللہ پاک رب العالمین ہے، ایک دو نہیں سینکڑوں قسم کی مخلوقات، اربوں لوگ، چرند پرند، مچھلیاں، سمندری جانور وغیرہ، سب کی پرورش ہو رہی ہے، سب کی ضروریات بر وقت ان تک پہنچ رہی ہے، کسی کی پرورش میں تاخیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 6 یا 7 ماہ کی عمر میں بیٹھنے لگتا ہے، 1 سال سے 2 سال کی عمر میں دانت نکالتا ہے، پھر چلنا شروع کرتا ہے، 12 سے 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک روٹین سے ہو رہا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ فلاں شخص 10 سال کا ہو چکا اس کے دودھ کے دانت نہیں نکلے؟ کبھی سنا؟ کبھی نہیں۔ فلاں کی عمر 50 سال ہوئی ابھی تک بالغ نہیں ہوا، کبھی سنا؟ کبھی نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک کی برابر پرورش ہو رہی ہے، سب کی ضروریات بر وقت پوری ہو رہی ہیں۔ جب سے دنیا میں آئے ہیں تب سے یہی دیکھا کہ آم جو ہے وہ گرمیوں میں آتے ہیں، یہ دیکھا بھائی آم گرمیوں میں ہی آتے ہیں، مالٹا سردیوں میں آتا ہے۔ کسان بیج ڈالنے میں تو دیر کر سکتا ہے مگر قدرت کے کارخانے میں سب کچھ وقت پر ہو رہا ہے۔ سب مخلوقات کی پرورش ایسے ہو رہی ہے جیسے ہم 2-4 انسانی رب کائنات کی زیر پرورش ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارا حال کیا ہے کہ ہم سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، قسمت سے مسجد میں آئی جائے تو واپس جانے کی جلدی ہوتی ہے، لوگ پہلی صف میں آسانی سے نہیں آتے کہ جماعت کے بعد نکلنا مشکل ہوگا، بعض تو دروازے پہ بیٹھتے کہ فوراً نکلنا آسان ہو۔ غرض اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کی ایسے پرورش فرماتا ہے جیسے ایک ہی اس کا بندہ ہوں، مگر ہم اس کی عبادت میں ایسی سستی کرتے ہیں، جلدی مچاتے ہیں جیسے ہم نے ایک کی نہیں بلکہ معاذ اللہ ہزاروں خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ میں نے جب بھی عبادت کا سوچا نفس نے فوراً اس دم دبوچا، نیکیوں کا نہیں سلسلہ کچھ، بس گناہوں میں ہی دل پھنسا ہے، اے حوث مال کی قلب بھٹکا، ہر نفس ہی ہے بس حب دنیا، اپنی الفت کا ساگر پلا دو یا حبیب خدا التجا ہے۔ حب دنیا مردار دل میں، کر چکی گھر ہے سرکار دل میں، تم جو آ جاؤ دلدار دل میں، بس ٹلی دل سے پھر یہ بلا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، غور و فکر کی عادت بنایا کریں کہ آج اگر 100,000 روپے بھی اگر کسی کمپنی میں لیتے ہیں نا تو ہماری ایکٹیویٹی کتنی اچھی ہوتی۔ ہم میں سے کتنے ہوں گے جن کو اپنی کمپنی سے 2022 میں ایوارڈ ملا ہوگا کہ جناب یہ ہے ہماری پوری کمپنی کا مین آدمی، ایک دن بھی چھٹی نہیں کی اس نے، ٹائم کی پنکچولیٹی میں ہماری مثال دی جاتی ہے کہ بھائی جس کو دیکھ کر تو اپنی گھڑیاں ملا لو آپ، یہ آیا تو سمجھ لو ٹائم ہو گیا ہے، ایسی پابندی۔ किसकी कर रहे हैं कि जो चंद हजार रुपए हमें दे रहा है और जिस रब कायनात की जो नेमतें इतनी कि गौर व फिक्र करते हैं तो फिर वही जबान पर आता है फबी अय आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, कि और अपनी रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। वो रब हमारा जो हमारी तमाम तर मसाइल को तकलीफों को दूर फरमाता है, हम उनकी इबादत नहीं करते। 22 जुमादुल उखरा जो है यौम सिद्दीक अकबर मनाया जाता है। मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु, इनका अंदाज इबादत देखिए कैसा है। हिजरत से पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने मक्का मुकर्रमा के अंदर अपने घर के अंदर मस्जिद बनाई हुई थी, वहां बैठकर आप कुरान की तिलावत फरमाते और अल्लाह पाक की मोहब्बत में ऐसे रोते थे कि कुफार आपको हैरत से देखते और कई कुफार तो आपकी पुरसोस तिलावत सुनकर कलमा पढ़ लिया करते थे। आप नमाज ऐसे खुशी और खुजू से पढ़ा करते थे कि दूर से देखने वालों को लगता गोया खुश्क लकड़ी खड़ी है। मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत मौला अली रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, हम गिरोह सहाबा ने जब भी किसी नेकी में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहा, हमेशा अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु को सबसे आगे ही देखा। अमीर रज़ा फरमाते हैं ना कि यकीनन मंबाए खौफ खुदा सिद्दीक अकबर हैं, हकीकी आशिक खैरुल वरा सिद्दीक अकबर हैं, निहायत मुत्तकी व पारिसा सिद्दीक अकबर हैं, तकी हैं बल्कि शाह अतकिया सिद्दीक अकबर हैं, अमीरुल मोमिनी हैं आप, इमामुल मुस्लिमी हैं आप, नबी ने जन्नती जिनको कहा सिद्दीक अकबर हैं। अल्लाह पाक हमें भी सिद्दीक अकबर के सदके जौके इबादत नसीब फरमाए और काश हम भी इत्मीनान के साथ जब जहन बनाए तो सही, जहन बनाए तो सही, हम अजान का इंतजार करते हैं, अजान होने वाली है, चले अजान हुई तो अब तो आ जाए, कहते अभी तो 15 मिनट बाकी है, अभी तो 20 मिनट बाकी है, थोड़ा सा ही हो थोड़ा सा ही हो, तो ये नहीं आगे आए। जैसे हय्या अलस्सला सुना इमाम गजाली फरमाते हैं कि अगर कोई लोहार हथौड़ा मारने के लिए उठाता और अजान की आवाज सुनता तो मारता नहीं बल्कि वापस नीचे रख के मस्जिद की तरफ चल पड़ता था। कोई चमड़ा सीने वाला अगर सुए को चमड़े में डालता और जैसे ही अजान की आवाज सुनता तो बाहर नहीं खींचता था, चमड़ा सुआ रखकर फौरन मस्जिद की तरफ रवाना हो जाता। इबादत का जौक अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। तो ए आशिकान रसूल मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहान वालों का पालने वाला है। इस आयत मुबारका में तवक्कुल का भी दर्स है, यानी अल्लाह पाक वो है जो तमाम जहानों को पालने वाला है। इस जमीन पर अरबों खरबों जानदार पाए जाते हैं, रब्बे कायनात इन सबको रिस्क अता फरमाता है, फिर भी उसके खजाने में कमी नहीं आती। गौर फरमाइए, क्या मुझे रिस्क अता फरमाने से माजल्ला उसके खजाने में कमी आएगी? नहीं, उसके खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए हमें रिस्क की फिक्र में मारा मारा फिरने और दूसरों के सामने हाथ फैलाने की हाजत नहीं। अल्लाह पर भरोसा रखे, उसकी जात पर भरोसा रखे, उसी रब्बे करीम के हुजूर झुके, उस पर भरोसा रखे कि रब ताला की जो नेमतें हैं अगर उनको हम शुमार करना चाहें तो शुमार ना कर सके। कहते हैं कि सबसे बड़ा जानवर जो है ये ब्लू वेल है, समुद्री जानवर है, 98 फिट लंबी है, होती है ये, और 1,57,000 किलो वजनी है। उसकी आवाज इतनी बुलंद होती है कि समुद्र के अंदर एक वेल दूसरी की आवाज 800 किलोमीटर दूर से सुन लेती है। इसका खाना रोजाना कितना होता है? यानी 2500 किलो खाना ये रोजाना खाती है। यानी एक छोटा सा जानवर है, मछली का पसंदीदा खाना है, और ब्लू वेल का बच्चा वो दिन में 190 लीटर दूध माँ का पी लेता है। इस तरह जो छोटे छोटे जानवर है उनको भी, तो कैलकुलेशन की गई कि वेल मछलियां कितनी है, 25,000 अप्रोक्स तकरीबन दुनिया में वेल मछलियां पाई जाती है। तकरीबन 6 करोड़ 25 लाख किलो खाना ये रब ताला सिर्फ वेल मछली को अता फरमाता है। और हमें खाना कितना चाहिए, तो रोटियां चाहिए हमको, है तो हम काय का टेंशन ले, अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह पर भरोसा करें। और इसकी एक जो एक अच्छी जो तरीका कार लिखा गया किताबों में कि अपने हाल पर खुश रहे। हमारे जो टेंशन बढ़ते ना, ये बस वो खूब से खूब तर की तलाश। कहते हैं कि एक अमीर आदमी जॉगिंग कर रहा था दरिया के किनारे। अब दरिया के किनारे कश्ती थी, दूर से नजर आ रही थी, और उस पर मछेरा जो है फिशरमैन, ये बैठा सिगरेट पी रहा था, बड़ा पुरसुकून टेक लगाकर बैठा हवा खा रहा था। ऊपर जो बिजनेसमैन होता है ना, वो तो आपको पता है चैन से बैठता ही नहीं है, कुछ हो जाए तो एक की दो दुकानें, दो की चार दुकानें, भाई किसी तरह मेरा माल बढ़े। अब ये सोचता रहा कि यार दरिया भी है, कश्ती भी है, मछेरा भी है, तो मछलियां क्यों नहीं पकड़ रहा। फिर दौड़ते दौड़ते सोचते सोचते इसके करीब पहुंचा। करीब पहुंचकर रुक कर उसने उसको आवाज दी कि भाई ये कश्ती भी है, दरिया भी है, तो जाकर मछलियां क्यों नहीं पकड़ते। उसने कहा कि मैं आज सुबह सुबह चला गया था, तो यही करीब में जाल डाला तो मछलियां आ गई, मैं पकड़ के ले आया मछलियां। उसने कहा दोबारा चले जाओ, दूसरी मछलियां पकड़ लो। उसने कहा दूसरी मछली पकड़ के क्या करूंगा। तो कहा पैसे आ जाएंगे तो नायलॉन के जाल खरीद लेना। कहा नायलॉन के जाल खरीद के क्या करूंगा। तो कहा नायलॉन के जाल खरीद के फिर बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ना। तो बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ के क्या करूंगा। तो कहा बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ोगे तुम्हारे पास माल आ जाएगा, तो बड़ी कश्ती बना लेना, समंदर में चले जाना मछलियां पकड़ने। तो कहा बड़ी कश्ती बनाकर समंदर में जाकर क्या करूंगा। कहा कि और बड़ी मछलियां आ जाएंगी, अच्छा सा घर बनाना, शादी करना, बच्चे होंगे, पुरसुकून जिंदगी गुजारना। उसने कहा अभी क्या कर रहा हूं। उसने कहा अभी क्या कर रहा हूं, कोई इतना बखेड़ा करके, इतने टेंशन लेकर, जब सुकून ही पाना है इस हाल में भी तो सुकून में ही हूं, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, है? तो हम बसा औकात जो है ना वो टेंशन, मतलब खूब से खूब तर इसके टेंशन पाले हुए ना भाई। बताए ना जिंदगी गुजारने के लिए हमें कमी क्या है भाई। हमारे जो भी अगर टेंशन है वो टेंशन किस चीज के हैं। टेंशन तो यही है यार, इसका घर यूं बन गया, मेरा घर नहीं बना, इसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं, इसके पास ये मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। यही जिंदगी का अंदाज है ना, जिसने हमको टेंशन में मुब्तला किया है। थोड़ा सा इजी हो जाए, जिस हाल में रब ताला ने रखा है उस रब की शुक्रगुजार बंदे बन जाए, अल्लाह पर भरोसा करें। यही सिद्दीक अकबर मुसलमानों के पहले खलीफा, इनका तवक्कुल देखिए कैसा कमाल था। बड़ा मशहूर वाकया है, गजवाए तबूक का मौका था, दीन की खिदमत के लिए माल की जरूरत थी, अल्लाह के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका व खैरात की तरगीब दिलाई। सहाबाए किराम अली रिदवान ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक राह खुदा में माल पेश किया, और माशा अल्लाह सिद्दीक अकबर अल्लाह अन्हु तो फिर सिद्दीक अकबर हैं। आप घर गए, सारा साजो सामान उठाया, लाकर बारगाह रिसालत में पेश कर दिया। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू बकर अहले खाना के लिए क्या छोड़ा है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है,
अल्लाह और उसका रसूल काफी है।
परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। तो कैसी निराली शान है जो माल की हिर्स में अल्लाह व रसूल को भूलते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते, लंदन पेरिस और न जाने कहां कहां फिरते, काफरों की ऊंची ऊंची इमारतों, उनकी दुनियावी तरक्की को ललचाईती नजरों से देखते हैं। उनके लिए कैसी जबरदस्त नसीहत है कि हम रब्बुल आलमीन के बंदे हैं, हमें बस अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है। लगाओ तो लो अपनी उससे लगाओ, झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद करीमा के हवाले से सुन रहे हैं,
آیت کریمہ میں ہے رب العالمین، جو تمام جہانوں والوں کا پالنے والا ہے. اب اس کے حوالے سے ایک آخری بات، آخری مدنی پھول سنیے کہ عربی لغت کے اعتبار سے رب تربیت سے بنا ہے، اور تربیت کا معنی ہے کسی چیز کو اس کی فطری صلاحیتوں کے مطابق درجہ بدرجہ مرتبہ کمال تک پہنچانا. تو یوں رب العالمین کا مطلب بنے گا اللہ پاک وہ ہے جو تمام جہانوں کی ہر ہر چیز کو اس کی فطری صلاحیتوں کے مطابق درجہ بدرجہ مرتبہ کمال تک پہنچا رہا ہے. تو ایک ہے اللہ پاک کی قدرت اور ایک ہے اللہ پاک کی ربوبیت. قدرت یہ ہے، مثلا اللہ پاک سیب کے درخت پر آم لگا دے، یقیناً اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، وہ ایسا بھی کر سکتا ہے. جبکہ سیب کے بیج کو زمین کے اندر پھاڑنا، اس کی کونپل نکالنا، پھر اس کونپل کو مضبوط درخت بنانا، پھر درخت پر پھول کے بعد بور لگانا، پھر بور سے تازہ میٹھے سیب بنا دینا، یہ ربوبیت ہے. یعنی بیج بھی اللہ پاک نے بنایا، اس بیج کے اندر سیب بننے کی صلاحیت بھی اللہ پاک نے رکھی، پھر اس بیج کو درجہ بدرجہ سیب بنا دینا، یہ ربوبیت ہے. اور پوری کائنات میں یہی ربوبیت کا نظام جاری ہے. ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اول تو ہم اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچانتے، ان کاموں میں پڑتے ہیں جن کی ہمیں صلاحیت نہیں دی گئی. پھر دوسرا مسئلہ یہ کہ محنت سے جی چراتے ہیں. بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ بس قدرت کا کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے کہ لمحے بھر میں میں بڑا آدمی بن جاؤں. طالب علم چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پڑھنا نہ پڑے، بس کسی اللہ والے کی نگاہ پڑ جائے اور دنیا بھر کا علم میرے اندر آ جائے. یوں ہم کرشمات کے انتظار میں رہتے ہیں. حالانکہ اللہ پاک فرماتا ہے رب العالمین، یعنی اللہ رب العالمین ہے، اس کی قدرت سے کوئی بعید نہیں. وہ چاہے تو کن فرما کر پوری کائنات بنا دیتا ہے، مگر اس نے کائنات کا نظام ربوبیت پر رکھا ہے، اور ربوبیت کا ایک پورا نظام ہے. ہم جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں پورے پروسیس سے گزرنا پڑے گا، تبھی کچھ بن پائیں گے. یعنی اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے واقعے کو سورہ یوسف میں جو بیان ہوا، اللہ پاک نے احسن القصص یعنی سب سے اچھا قصہ فرمایا. آپ سورہ یوسف پڑھیے، جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی ابتدا ہوتی ہے، اختتام بھی وہیں پر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن شریف میں خواب دیکھا، کیا 11 ستارے، چاند اور سورج سب آپ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. یہ دنیا میں آپ کی منزل کا تعین تھا، مگر اس منزل تک پہنچنے کے لیے کتنا عرصہ لگا. آپ کو کنویں میں بھی ڈالا گیا، مصر کے بازار میں بھی پہنچے، پھر عزیز مصر کے گھر تشریف لائے، یا خواتین آپ کے لیے آزمائش کا سبب بنی، کتنا عرصہ بے قصور قید برداشت کرنا پڑی، پھر کہیں جا کر آپ عزیز مصر بنے، دنیا نے آپ کی شان و عظمت کا پہچانا، پھر آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کی خالہ محترمہ، آپ کے 11 بھائی مصر آئے اور انہوں نے آپ کے سامنے سجدہ تعظیمی کیا، جو پہلی کی شریعتوں میں جائز تھا. دیکھیے پورا سرکل ہے، سب سے پہلے منزل کا تعین کیا جاتا ہے، پھر اس منزل پر پہنچنے کے لیے اس کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں، مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ہزاروں مشکلوں کے بعد آدمی اپنی منزل پر پہنچتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مثال دیکھیے. آپ صدیق اکبر ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے، اپنی جان مال سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کیا. علماء فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ روزانہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے. اب غور کیجئے گا مدنی چینل کے ناظرین، روز ایک ہی سوال پوچھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کا ایک درجہ بیان فرماتے، صدیق اکبر اس درجے پر عمل کرتے. اگلے دن آ کر پھر وہی پوچھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا اگلا درجہ بیان فرما دیتے. تو یوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ روزانہ ईमान का एक नया दर्जा सीखते, एक ही दिन में उस पर अमल पैरा होकर अगले दिन नया सबक लेते, यूं करते रहे, रोजाना पूछते रहे, ईमान का एक एक दर्जा तय करते गए। आखिर वो वक्त आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अबू बकर का ईमान एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में तमाम वालों का ईमान रखा जाए तो अबू बकर का ईमान तमाम जमीन वालों के ईमान से वजनी होगा। क्या शान है सिद्दीक अकबर है, गौर फरमाइए, सरापा मोजजा नबी। रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली के इशारे से चांद चीर सकते हैं, वो चाहते तो एक ही निगाह से सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अन्हु को ईमान के तमाम दर्जा तय करवा देते, मगर दस्तूर है दर्जा ब दर्जा कमाल तक पहुंचाया जाता है। लिहाजा रोजाना की रोजाना एक एक दर्जा तय करवाया, यहाँ तक कि ईमान के बुलंद तरीन मकाम तक पहुंचाया। तो हमें भी चाहिए कि हम करिश्मात के इंतजार में ना रहें, ये दुनिया मेहनत की जगह है, कोशिश की जाए, मेहनत की कदर की जाती है, हम मेहनत करें, रब करीम की इनायात बेशुमार हैं। अल्लाह पाक हमें भी मेहनती इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि मसाइल ये जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी का हिस्सा है। कोई चाहे कि मेरे सारे मसाइल खत्म हो जाए। एक बुजुर्ग के पास एक परेशान शख्स हाजिर हुआ कि आपसे कुछ मसाइल के हल के हवाले से कुछ मशवरा करूंगा, तो देखा कि आप वो अपने हुजरे में मौजूद नहीं थे, पता चला नदी के किनारे गए हुए हैं। वो नदी के किनारे पहुंचा तो हजरत वहां बैठे थे, तो उसने जाकर अर्ज की कि हुजूर मैं आप ही से मिलने आया था, तो मेरे बहुत सारे मसाइल हैं, आप मुझे कोई इसका हल दें, तो आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? तो कहा मुझे नदी के पार जाना है, तो मैं इंतजार में बैठा हूं कि पानी गुजर जाए तो फिर मैं जरा नदी पार कर दूं। तो वो शख्स मुस्कुराने लगा कि हजरत कैसी बातें कर रहे हैं, नदी तो रवा दवाई रहेगी, ये कैसे मुमकिन है कि आप पानी रुक जाएगा और फिर आप जाएंगे? आपको अगर नदी से गुजरना है तो इसी पानी से ही गुजरना पड़ेगा। फरमाया कि हम भी तो लोगों को ये समझाते कि जिंदगी गुजारनी है तो इन मसाइल के साथ ही गुजारनी है। भाई ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि आदमी के पास जरा ये काम निमट जाए तो फिर करेंगे। दावत इस्लामी के माहौल में एक बड़ी प्यारी मिसाल दी जाती है कि किसी को कहा कि भाई इज्तिमा में आया करें ना, मदनी काफिलों में सफर करें। तो नौजवान था वो कोई, तो उसने कहा कि जनाब दुआ करें, पढ़ाई कर रहा हूँ, बस पास हो जाऊं, पास हो जाऊंगा तो घर वाले जरा मुतमइन हो जाएंगे, मैं इज्तिमा वगैरह में आना शुरू कर दूंगा। चले जी पास हो गए, अब आ जाए तो कहा दुआ करें नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाएगी कुछ कमा लेंगे तो घर वालों को कुछ देना शुरू करेंगे तो आसान हो जाएगा आना जाना, दिन का काम करना भी आसान होगा। चलो जी नौकरी मिल गई, अब आ जाए तो जरा दुआ करें, घर वाले शादी का कह रहे, शादी हो जाएगी तो खुद मुख्तार हो जाएंगे, फिर कोई मसला नहीं होगा, फिर तो मैं आप ही के साथ इज्तिमा में सब जगह जाएंगे, इबादत भी करेंगे, खूब नेकियां करेंगे। चलो जी शादी हो गई, अब आ जाओ, क्या दुआ करें बच्चा हो जाए, घर में अकेली होती है, बच्चा हो जाएगा तो जरा मामला सेट हो जाएगा, फिर मैं आपके साथ ही निकलूंगा। चलो जी बच्चा हो गया, अब आ जाओ, अरे बच्चा रोता बहुत है, ऐ दुआ करें, दुआ करें ये सब हो जाए। तो ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सारा जिंदगी का हिस्सा है। फुर्सत कब मिलेगी? जब ऐलान होगा हजरात गए, छुट्टी हो गई इनकी, जनाजा है भाई, ये फुर्सत होगी फिर, और फिर हमें आंख खुलेगी। इधर इंसान सो रहा है, जब मरेगा तब आंखें खुलेंगी। हम तो कहते हैं ना ये मर गया इसकी आंखें बंद हो गई, नहीं नहीं, इंसान सो रहा है, जब मरेगा तब आंख खुलेगी। कह रही ये क्या हो गया, मुझे तो समझाया जाता था कि आए हम नमाज की तरफ, इबादत की तरफ, नेकियों की तरफ, और हम कहां फिर गए। इतनी परेशानियां बढ़ती हैं, आते हैं लोग मसाइल का शिकार हैं दुनिया भर में, इस वक्त जो सुन रहे वो देखें हमारी इन परेशानियों ने किस किस को नमाजी बनाया है, नहीं बनते। आज भी जो बेनमाजी था वो बेनमाजी ही है, जो अपने वक्त को हराम और नाजायज कामों में सर्व करता है, बदनिगाहियां करता है, वो आज भी इसी काम में मसरूफ है। घर की परेशानियां हैं, माँ घर वाले बच्चे तरह तरह की बीमारियों में मुबतला होकर अस्पतालों में पहुंच गए, अरे खुद भी अस्पताल में पड़ा पड़ा भी बेहयाई के मनाजिर देखने से बाज नहीं आता। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम मुसलमान हैं और मुसलमान को एक डिसिप्लिन दिया गया है, एक तरीके कार दिया गया कि हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो दावत इस्लामी का ये दीनी माहौल हमें बुला रहा है, आए नमाजों की तरफ, आए इबादत की तरफ, आए नेकियों की तरफ, ताकि जिंदगी कामयाबी के साथ गुजारें, ईमान की सलामती के साथ दुनिया से जाएं, ताकि आगे की जो कब्र की मंजिलें हैं, आखिरत की जो मंजिलें हैं, ये हमारी अच्छी हो जाए। आखिर में मैं आपको एक वुजू की एक सुन्नत बताता हूँ, वो है बिस्मिल्लाह पढ़ना। वुजू की 14 सुन्नतें हैं, इनमें दूसरी सुन्नत है वुजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। हदीस पाक में है कि आदमी वुजू की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह ले तो जब तक उसका वुजू रहेगा फरिश्ते उसके लिए नेकियां लिखते हैं। ख्याल रहे, अगर वुजू से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी तब भी वुजू हो जाएगा, अलबत्ता सुन्नत पर अमल का सवाब नहीं मिलेगा। आजकल चूंकि घरों में अटैच बात होते हैं, इसमें भी लोग वुजू करते हैं, तो ऐसे अटैच बात में वुजू से करने से पहले बिस्मिल्ला शरीफ या दौराने वुजू पढ़ने वाली दुआएं ये नहीं पढ़ सकते। अटैच बात हो तो ऐसे में बिस्मिल्ला शरीफ बाहर ही पढ़कर फिर हम वुजू करें। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही खातम नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मैं मुबल्लिग बनू सुन्नतों का खूब चर्चा करूं।